نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ یوسف کے آخری سیشن کا آغاز کرتے ہیں ویسے تو ہم آج تفسیر آیت 77 سے شروع کریں گے لیکن آج ہمارے ساتھ نئے ساتھی بھی ہیں تو آئیے ذرا ابھی تک کی کہانی کو گو تھرو کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے ایک نبی کے بیٹے تھے ایک نبی کے پوتے تھے اور ایک نبی کے پرپوتے تھے بہت اعلیٰ خاندانی انسان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بھی دی تھی لیکن باطن کی خوبصورتی بھی دی تھی ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کو ایک ایسا خواب سنایا کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کر کوئی بہت عظیم انسان بنے گا باپ نے اس خیال کے تحت کہ کہیں میرے بچے کے اس خواب کو سن کر کوئی اس سے حسد نہ کرے بچے کو منع کر دیا کہ اپنا خواب دوسرے کو بیان نہ کرنا اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے اور اپنے باپ کی گود سے نکال کر کنویں کی گود میں ڈال دیے گئے بھائیوں نے سوچا کہ کنویں میں ڈال دیں گے کہیں کوئی آتا جاتا قافلہ ان کو لے جائے گا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے باپ کی محبت مل جائے گی حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ نفرتیں دے کے کبھی محبتیں نہیں خرید سکتے لوگ کچھ سوچ رہے تھے اللہ نے کچھ اور کیا بھائیوں نے اپنا کام کیا اللہ نے اپنا کام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں سے جس شخص نے نکالا اس سے مصر کے وزیر خزانہ آج کی زبان میں اور قرآن پاک نے اس کو عزیز مصر کا نام دیا اس نے خریدا اس نے حضرت یوسف کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ کوئی خاندانی بچہ بیوی کو آ کے کہا کہ اس کو بہت اچھی طرح سے رکھنا یہ خوبصورت بھی ہے اس کے ایٹیکیٹس بہت اچھے ہیں لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی آیت نمبر 21 میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے کیسے تھے حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف تھے پیرللی اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل ان کی نسل میں سے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہاں سے ہمارے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ سکتی ہے کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ وہ بڑے ہم تو آج بہت خاندانی انسان ہیں اور ہمیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننے کی ضرورت نہیں جو کہ حضرت یوسف کے تحت دیے گئے تو یہ ہماری ناسمجھی ہوگی یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب کنویں میں ڈالے گئے کنویں سے جب نکالے گئے تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے بعض دفعہ انسان خوبصورت ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنا جسم تک فروش کر دیتا ہے بعض دفعہ ماڈلنگ تک کا پروفیشن اختیار کر لیا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارا فگر بڑا خوبصورت ہے تو وہ حسن جو انسان کی آزمائش بن جائے وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے حضرت یوسف کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب اس عورت نے حضرت یوسف کو اٹیمپٹ کیا ان کو برگلانا چاہا اس کے بعد باتیں جب معاشرے میں پھیلی تو باہر لوگوں نے باتیں شروع کی سمجھدار عورت تھی اس نے کہا کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لو میں ان کو بھی ایک جھلک یوسف کی دکھا دیتی ہوں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے آپ پوری فلم انڈسٹری کو دیکھیے اسی تھیم پہ چلتی بھی دکھتی ہے خیر باقی عورتوں کو بلایا ایک بڑی خوبصورت پوش قسم کی پارٹی اس نے رکھی حالات کچھ ایسے بنا دیے کہ وہ اس ماحول میں اس طرح مسخور ہو گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس خوبصورت ماحول میں آئے تو ان عورتوں کو ہوش نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں پہ اپنی چھریاں چلا لی قرآن نے اس کو کہا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں لیکن یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوسف علیہ السلام جس ماحول میں تھے وہ پرورٹیڈ ماحول تھا عورتیں خود جب لڑکوں کو پیغام بھیجیں اور ہینکی پھینکے اس کے بعد ان کو اپنی طرف مائل کریں اور آنکھ میں کچھ چبھ گیا اور ہاتھ میں کچھ چبھ گیا ایسی ادائیں دکھا کے جب لڑکوں کے ٹچ لینا چاہیں تو پھر وہ سوسائٹی جو ہے وہ شریف مردوں کے رہنے والی نہیں ہوتی لہذا یوسف علیہ السلام نے اس کی بات پہ باوجود اس کے کہ یوسف علیہ السلام غلام تھے اکیلے بھی تھے جوان بھی تھے پہل عورت کی طرف سے تھی لیکن ان سب کے باوجود یوسف علیہ السلام نے یس نہیں نو کہا یہ ہے وہ چیز جو آج ہم اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور اپنے مردوں کی نگاہوں के अंदर भर दे, ईमान आ जाता है, तो फिर इंसान को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डिज्नीलैंड में आज गया हुआ है, लॉस वेगास में है, ये वेकेशन प्लान चल रहा है और वो क्रिसमस की छुट्टियां मना रहा है, या वो मक्का में है, या वो हज पे है, या पाकिस्तान में। मोमिन हर जगह मोमिन होता है। जैसे गुलाब के फूल को आप जहां भी ले जाएंगे वो गुलाब का फूल ही रहेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह की इस दावत को नो कह दिया। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लगा कि भाई मैं इस माहौल में रहा तो शायद मेरे पे भी असर हो जाए। ये माहौल का असर आजकल हमारे माशरों में उस वक्त दिखता है कि जब पेरेंट्स खुद तो खूब कई साल रह लेते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे जवान होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं और कुछ ना कुछ आसार उसके माहौल के दिखने लगते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स उस वक्त ये सोचते हैं कि चलो इनको पाकिस्तान लेके चलते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि यहाँ आएंगे, आते ही बिल्कुल ये नेक शरीफ बच्चे बन जाएंगे, लेकिन वो माहौल के आदी नहीं हो चुके होते। 2-4 साल के बाद लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच के नहीं आते कि हमें कुर्बानी देनी है। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम यहाँ भी बाहर का खाना खरीद लेंगे, एसी वाले घर लेंगे। लेकिन याद रखिए, हिजरत और कुर्बानी साथ साथ चलती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में देखा कि आखिर मैं इंसान हूँ, आज रिजिस्ट कर रहा हूँ गुनाह को, कल कर रहा हूँ, शायद आगे से ना करूँ। और होता भी ऐसे ही है, ये ऐसे ही जैसे आप किसी जगह आए, आपको थोड़ी सी बैड स्मेल आए, अगर आप इग्नोर करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको वो स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह बुराई शुरू में बहुत बुरी लगती है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा गुनाह याद कीजिए जो आपने फर्स्ट टाइम किसी के मजबूर करने पर किया था। किसी दोस्त के कहने पर आप चली गई कॉलेज से, ज़ाहिर ये लगा कि आप अपनी दोस्त के साथ गई हैं, उसने कहा चलो मेरे साथ आओ, चलो मम्मी को क्या पता चलना है, हम कॉलेज टाइम से ही वापस आ जाएंगे। वहाँ जाके देखा तो एक लड़का भी बैठा हुआ था। अब ज़रा सोचिए, ऐसी लड़की जो बहुत शरीफ है, जिसने कभी किसी लड़के को तो छोड़ दीजिए कहीं स्कूल से बाहर कदम नहीं रखा था, उसको कितना खौफ आएगा। उस वक्त तो वो यही सोचेगी ना कि कोई मौका मिले और मैं जल्दी से अपनी जान बचा के यहाँ से घर पहुँच जाऊँ और मुझे कोई देखे ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे वक्त में वो बच के आ गई, कुछ नहीं हुआ, और सेकेंड टाइम भी वही चांस हुआ, तो आप देखेंगे ना माथे पे पसीना होगा और ना हाथ ठंडे हो रहे होंगे, और हो सकता है एक दो बार की रिहर्सल के बाद फिर वो सारे इसी की आदी हो चुकी हो। तो गुनाह की एक झिझक होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कहीं मेरी ये झिझक उतर ना जाए, कहा अल्लाह ताला मुझे जेल में डाल दे। ये जेल असल में उन्होंने खुद ढूंढी थी। आज के दौर में इस जेल को आप ये कह सकते हैं कि जेल जो होती है इंसान का अपना ज़मीर है, तकवा की जेल। हर इंसान अगर अपनी अदालत में खुद को जवाबदेह समझे तो हकीकत में उसको बाहर की प्रिजंस की ज़रूरत नहीं। यकीन कीजिए, किसी की बात है, कोई भी फेमस शख्स है, तो जिसका खुलासा जो मुझे याद है वो ये है कि अगर लोगों के ज़मीर जिंदा कर दिए जाए तो बाहर की जेलों की ज़रूरत नहीं रहती। और इस्लाम को लोगों ने ये क्रेडिट दिया है कि इस्लाम ने लोगों के ज़मीर जिंदा किए और वेस्ट पाबंदियां लगाने के बाद लोगों को ट्रीट कर रहा है। तो लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने उस दावत को कबूल जब ना किया और बिल आखिर फिर उन्होंने जेल में जाना पसंद कर दिया। अब एक अच्छा इंसान चाहे तो किसी मोहब्बत वाले माहौल में हो या नफरत वाले में, वो अपनी खूबी ज़रूर देगा। दुआ कीजिए अल्लाह में अच्छा बना दे। फिर ईस्ट में रहेंगे या वेस्ट में रहेंगे, गांव में जाएंगे या शहर में, खैर ही देंगे इंशाल्लाह, अपनी फूलों की तरह की खुशबू ही देंगे। यूसुफ जेल में गए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नेकी की वजह से मारूफ हो गए। उसी जेल में दो लोग जो थे उन्होंने ख्वाब देखा हुआ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए से ख्वाब की बिल्कुल सच्ची ताबीर सामने आ गई। जो शख्स बाहर जा रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ये बता भी दिया था कि देखो मेरा जिक्र बाहर जाके करना, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म से वो भुला दिया गया। कुछ अरसे के बाद उसी मुल्क के बादशाह ने ये ख्वाब देखा कि कुछ इस किस्म का ख्वाब था जो जुमा नहीं था। होते हुए बात हज़रत यूसुफ तक गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि उस ख्वाब की ताबीर बताई, बल्कि तदबीर भी बताई कि जो आने वाला ड्राउट है यानी कहत पड़ेगा, उससे कैसे निपटना है। बादशाह को वो बंदा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लाओ इनको कैद में पड़े हुए, इनको बाहर लाओ। यूसुफ ही रिफ्यूज्ड, कहने के सॉरी मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरे ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम दूर कराइए। और इस तरह से वो केस दोबारा कंसिडर किया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनकी बेगुनाही उन सब औरतों ने सब के सामने गवाही दी कि हमने सेड्यूस किया था यूसुफ को, हालांकि यूसुफ के अंदर खैर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से नो कहा था, सेइंग नो टू टेम्पटिंग ऑफ ऑल काइंड्स, आज देखिए कि हमारे बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें टेम्प्ट कर रही हैं, हमें खुद को कौन सी चीज़ टेम्प्ट करती है। चारों तरफ देखिए, कहीं डेटिंग है तो कहीं चैटिंग है तो कहीं ड्रग्स हैं तो कहीं प्रॉन है तो कहीं इनडिसेंट किस्म के एड्स हैं, कहीं अल्कोहल आम है तो कहीं सोशल ड्रिंकर के नाम पे और कहीं चेन स्मोकर के नाम पे और वल्गर वीडियोस है और कहीं प्रोस्टिट्यूशन है और कहीं गंदी मूवीज हैं। कितने हमले आज हम पे, वहाँ की हर औरत को आप यहाँ का एक अलग सिलसिला कर दीजिए तो आप देखिए कि सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ सिन एंड मेजर कॉज ऑफ एड्स एंड अदर डिजीजेस। आज साइंस ने ये बता दिया कि जितने ज्यादा फ्री सेक्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उतनी एड आम होती जा रही है। तो जब इतनी चीजें हैं तो क्या हमें अपने बच्चों या अपने यंगस्टर्स की सोच को और उनकी अकल को पाक नहीं करना? ये एक फिगर है आपके सामने कि शुड नॉट वी बी कंसर्न, क्या हम माँ बाप को अब इसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या बैठे रहे कि नहीं बड़े नेक हैं, यूसुफ भी बड़े नेक थे? क्या हम खानदानी, हम बड़े खानदानी हैं तो क्या यूसुफ खानदानी नहीं थे? आप देखिए कि जब बुराई का हमला होता है तो आप उसके ऊपर अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकते। ये एक रिपोर्ट है हमारे सामने, अगर आप देखिए ये 1990 से 2005 के इन बिटवीन में नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV मिलियंस, यानी बीमारियां जो पैदा हुई, ये देखिए 2.8 मिलियन लोग जो थे एड की वजह से मर गए। और एड क्या है आप सब जानते हैं, एक के जम दूसरे की तरफ जाते हैं। इस तरह न्यूली इन्फेक्टेड विथ यानी HIV 4.1 मिलियन, फिर कुछ लोग इस बीमारी से जो जी रहे हैं अभी तक वो 38.6 मिलियन है। यानी आप इन सारी चीज़ों को सिर्फ ये देख लीजिए कि जब हम बुराई को दीन की रोशनी में नहीं बंद करते तो फिर लोगों को कानून की रोशनी में उसको बंद करना पड़ता है। ये एक बहुत अलमिया है, बुरी फुहश गंदी दावतों को गंदी चीज़ों को हम नो कैसे कहें, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि क्या करें। यूनिवर्सिटी में सब यही करते हैं, कॉलेज में होता ही ऐसे है। और प्रॉन का नाम सुना होगा मैंने, सुना अब यहाँ भी शुरू होगी वो बोला। देखिए कि जो बात आज मेरे मुंह से सुन रहे हैं अगर आपने पहले नहीं जानी तो आज से 2-4 साल बाद यहाँ भी होगी। अगर वॉलेंटाइन यहाँ आ गया जो आज पहले नहीं था, कोई और ऐसी बलाएं आ गई, क्रिसमस से तो हम सारे ही मारूफ हैं और इसी तरह से हेलोविन टाइप मनाते हैं, तो ये भी आ रही हैं। जिस दिन स्कूल का आखिरी दिन होता है, यानी आप कह लीजिए कि फेयरवेल पार्टी तो हमारी होती थी ना, हाई स्कूल का फेयरवेल डे जो होता है जिस दिन लड़कियों लड़कों ने वहां से फारिग होना होता है और अगले कॉलेज में जाना है, उस दिन एक फंक्शन रखते हैं उसको प्रॉन कहते हैं। और उसका मतलब क्या है, यानी सीधी सी बात है कि जो शरीफ लड़के लड़कियां होते हैं उनका वो फर्स्ट टाइम जिस्मानी ताल्लुक होता है। लड़कियां उस दिन वेडिंग ड्रेसेस पहनती, उस दिन चूज करते हैं अपने कपल और पूरे पूरे होटल्स बुक होते हैं। और हमारे मुस्लिम बच्चे बच्चियां माँ बाप उनको दूर कर भी दे लेकिन वो घर में आंसू बहा रहे होते हैं कि हम क्यों मुस्लिम हो गए, हमारे पास कोई फन नहीं। कभी आप इसकी कहानियां सुने तो आप अस्तगफार के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। और याद रखिए बुराई एकदम नहीं आती और एकदम नहीं जाती, हम बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं जहां वो पहुंच चुके हैं। और उसकी जो बुराइयां और जो उसकी गंदगियां हैं और बहुत कुछ, यानी यहाँ इस जगह पे बैठ के बताने वाली वो बातें ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आज कई पार्टियों के नाम तो मैंने यहाँ के सुने हैं जो मैंने वहां नहीं सुने। तो लिहाजा इन सब चीजों को हमें अपने बच्चों को समझाना है। कुरान वो नसीहत कर सकता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप खुद यंग है, अभी आपकी लाइफ इस स्टेज पे है कि आपको हर तरफ से इस तरह के फितने हैं, तो अल्लाह के दामन को थामे। अल्लाह का कुरान जो है ये इंसान की जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीजों को लाता है। आप देखिए कि बस लोग ये फीलिंग्स देते हैं कि इस्लाम का लाइफस्टाइल जो ये प्रिजन है, ये कैद है, ये कांटों वाली जिंदगी है। इस्लाम ने हालांकि जितनी हमें प्रोटेक्शन दी है इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अलग से बहुत बात होती है कि किस तरीके से इस्लाम ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, सूरत नूर अगर आप पढ़ें तो शुरू में जिना की सजाओं की बात है और उसके बाद से तीसरे ही रुकू से लेके एंड तक प्रिकॉशंस हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड द जिना, किस तरह से औरतें अपने आप को छुपा के रखें, कैसे मर्द रखें, घरों में जाएं तो इजाज़त लेकर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेंगे। यहाँ तक हम जब पहुँचे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो अज़ीज़े मिस्र के दर्जे पे पहुँच चुके हैं, बादशाह के ख्वाब के असर से उनको ये पता चल चुका था कि अब इस मुल्क में कहत आएगा। उन्होंने खुद से मांग लिया कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे इस मुल्क का वजीर ख़जाना बना दीजिए और मैं इसको टेक केयर करूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ और चारों तरफ जो था वो कहत था और मिस्र के अंदर बहुत सारा अनाज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिल के भी मालिक थे, उन्होंने बाकी मुल्कों में भी कोटा सिस्टम मुकर्रर करके अनाज देना शुरू कर दिया। बाकी लोगों की तरह कनान से यानी सीरिया से उनके भाई भी आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ बहुत अच्छा मामला किया और उनको कहा कि अगली दफा अपने भाई को भी लेके आना। अब भाई को बहुत ज्यादा बाप के साथ अच्छा मामला करके, क्या फिक्र ना कीजिए, हम इसकी हिफाजत करेंगे, जब वो लेके आ गए। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई के साथ जब मिलते हैं, तो कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको आप कह सकते हैं को इंसिडेंसेस, यानी वाकयात की एक ऐसी लड़ी चल पड़ी कि जिसके नतीजे में हालात कुछ ऐसे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा भाई बिन्यामीन वो इनके पास रहना था। अभी तक तो भाई डिफेंड कर रहे थे क्योंकि इस दफा वो अपने बाप को ये मैसेज देकर आए थे कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब बिन्यामीन के सामान में से बादशाह का खोया हुआ प्याला निकला, तो फौरन भाई दूसरे आयत पे जाके कहते हैं, अब देखिएगा आयत को, आयत 77, कालू इन यसरिक फकद सरक अखुल्लहू मिन कबल। इन भाइयों ने कहा कि ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यानी यूसुफ भी चोरी कर चुका है। जरा यहां इस जुमले पे गौर कीजिए, ये लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि किसी एक इंसान को कोई बुरा काम अगर करते देख लें या उसके बारे में कुछ सुन लें, तो फौरन उसके बाप भाइयों उसके खानदान पे पहुंच जाते हैं। छोटी सी मिसाल देती हूँ, बात ज्यादा अच्छी समझ आती है। अगर खुदा ना खास्ता बहू ने कोई गलत काम कर दिया, कोई काम खराब कर दिया, झट से तेज जुबान सास बोलती है, हाँ इसकी तो माँ भी ऐसी है और इसकी तो खाला भी ऐसी है। और कुछ मर्दों को अपनी जुबान पे काबू नहीं होता, वो बात पे बात बीवियों को मैके की गाली देते हैं। तो याद रखिए कि ये एक डिग्रेडेड इंसान का, सब स्टैंडर्ड इंसान का ये एक मेयार होता है कि वो दूसरे के ऊपर इल्जाम रखे। दूसरी बात है कि इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? रिवायात में इस पे बहुत कुछ आता है। बात कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में अपने घर से रोटियां लेके जाते थे और जाके फकीरों को दे देते थे, तो लोग सोच लेते थे कि शायद ये रोटियां चोरी करते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन बात यह है कि यूसुफ के जरा इस वक्त किरदार को देखिए, खड़े कहाँ हैं यूसुफ के सामने, पता उनको कोई नहीं कि ये जिसको या अय्युहल अजीज कह रहे हैं ये खुद यूसुफ ही है, और मुंह पे इल्जाम लग रहे हैं कि हाँ जी इसके भाई ने भी चोरी की थी। फअसर रहा यूसुफ फी नफ्सिही वलम युब्दिहा लहुम। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गया, हकीकत इन पर ना खोली, आप और मैं होते तो क्या करते? आप जरा जहन में लाइए मिसाल, मेरा ख्याल है कि हम तो उस वक्त चीख पड़ते कि बताओ मैंने चोरी कहाँ की। क्या हम अपने दिन का एक बेशतर हिस्सा सिर्फ अपने दिफा में नहीं गुजारते? अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, कभी रोते हैं, कभी टसवे बहाते हैं, कभी फिर जज्बाती हो जाते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी सर पे दुपट्टा बांध लेते हैं। क्या अक्सर औकात हम इसी वजह से स्ट्रेस नहीं रहते कि लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं? देखिए ये है हुसन जिसकी दुआ कीजिए, इसके लिए पढ़िए आप सूरह यूसुफ प्रेगनेंसी में, ताकि आपका बच्चा इतना खूबसूरत हो कि फासर रहा, छुपा लिया, पी लिया दिल में, अब जो तुम कहते हो मैं क्या कहूँ तुम्हें, काला जीरे लब बोले, दिल में बोलने लगे कि अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये जर्फ जो है ना, ये है असल में बच्चियों को सिखाने वाला। हम सूरह यूसुफ में से बच्चों की तरबियत के लिए रहनुमाई ले रहे हैं ना। आप देखिए कि जो बच्ची अपने माँ बाप के घर में होती है ना, वो बहुत प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि माँ ने किसी को नहीं बताना, खुद अंदर सारा दिन डांटती रहेगी लेकिन बाहर आके कभी बच्चे की बुराई नहीं करेगी, और खुद जितना मर्जी बुरा कह ले, लेकिन अगर दूसरा बच्ची या बच्चे की बुराई करे तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों को तरबियत में ये बात बता दें कि देखो बेटा, अगर तुम हक पे हो, तुम ठीक हो ना, तो तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, अपने आप को ठीक करो। आप देखिए क्वालिटी जीतती है ना, सच जीतता है। आप अगर हक पे है ना, कोई अगर आपको बुरा कह भी रहा है ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब बंदा खुद अपने आप को ही डिफेंड करता है ना, तो अल्लाह बंदे को बंदे के सर पे डाल देता है। जब हम खामोश रहते हैं ना, तो अल्लाह हमारी मदद करता है। बहुत मारूफ वाक्य है सूरत मरियम, कभी जिंदगी रही तो आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा उसमें कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पे जिना का इल्जाम लगने लगा है, पेट में बच्चा आ चुका है, गोद में बच्चा लेके जा रही है। अब कहा अल्लाह ताला मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कौम को, ये बच्चा कहाँ से आया? तो क्या कहा कि मरियम जरा खूब बोलना, थोड़ा रो लेना, थोड़ी कस्में खा लेना। नहीं, लन उकल्लिमुल यौमा इंसिया, आज के दिन मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। खुश रहने का राज लिख लें कि आप अगर सच्चे हैं तो खामोश रहें। मियाँ आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, मिसाल है आज आप दर्स में, वो कहेंगे हमें पता है आप तो दावत के बहाने जाती हैं दर्सों में, कहते हैं ना पी लीजिए, स्माइल, मुस्कुरा दें। आप इस दर्स के बाद जाके जो खूबसूरत बिहेवियर उनके सामने रखेंगी उससे उनको यकीन आ जाएगा कि ये आम पार्टी नहीं थी। तो बहरहाल बात यह है कि हम अपने मामलात को अल्लाह पर डाल दें। यूसुफ को पता था मैं ऐसा हूं नहीं। और आप देखिए कि अगर हम बंदों की नजरों में सच्चे हो भी गए तो अल्लाह की नजर में अगर झूठे हैं तो फायदा नहीं होगा। यूसुफ कहेंगे काला बलन तुम शर्रु मकानन, दिल में कहने लगे वैसे हो तुम बड़े बुरे लोग, मेरे मुंह पे मुझे बातें करते हो, कोई बात नहीं, वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और जो इल्जाम तुम लगा रहे हो इसकी हकीकत अल्लाह खूब जानता है। ये बात हाईलाइट कर ले, बस अल्लाह की नजरों में सच्चे हों, फिर देखिए कितना सुकून मिलता है, कितना सब्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को एक मौके पे किसी ने आके कहा कि अबू हुरैरा आपको पता है फुलां जगह पे कोई शख्स आपकी बुराई कर रहा था, तो कहने लगे मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे अबू हुरैरा को तो हर वक्त तीन बातों का गम है। आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ क्या गम होंगे, कोई खाने का पीने का कपड़ों का जेवर का। कहने लगे कि नहीं मुझे ये गम है कि आज तो मैं नेकियां कर रहा हूं लेकिन पता नहीं मेरी मौत किस काम पे आ जाएगी, अगर किसी बुरे काम के वक्त मेरी मौत आ गई तो मेरा अंजाम बुरा होगा। दूसरी बात है कि जब नामे अमाल बटेंगे तो मेरा नामे अमाल दाएं हाथ में बट जाएगा या बाएं में जाएगा। और तीसरा गम यह है कि जब पुल सरात से गुजरेंगे तो क्या मैं खैरियत से गुजर जाऊंगा या कट के उसके अंदर गिर जाऊंगा। फिर कहते हैं कि अगर मैं ऐसे वक्त में इन तीन मकामात से खैरियत से गुजर गया तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहते हैं कि बुरा के, हु केयर्स मेरी भला से हा? और कहते हैं कि अगर मैं इन तीन में से किसी एक जगह पर रोक लिया गया तो दुनिया के हर बंदे को इसका हक पहुंचता है कि वह अबू हुरैरा की बुराई करे कि देखो कितना बदकिस्मत है कि ये फलां जगह रोक लिया गया। तो आज अपने दिल में ये बांध लीजिए कि मुझे लोगों की तारीफ और तनकीद की कोई परवाह नहीं है। देखिएगा आप दुनिया में आ जाएंगे, बाद लोग अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना लोगों से डरते हैं। फिर कहा कालू या अय्युहल अजीज, कहने लगे ए अजीज ए सरकार। जरा नोट कीजिए इस जुमले को, पीछे क्या कह रहे हैं, इसके भाई ने चोरी की और इधर उसी शख्स को अब कह रहे हैं या अय्युहल अजीज। ये है ना इंसानी इल्म की इंतहा, खुद नहीं पता कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के सामने खड़े हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि बास दफा हम दिलों में कुछ और रखे होते हैं रिश्तेदारों के खास तौर पे, लेकिन जब हम उनके सामने जाते हैं तो हम बड़े अच्छे अच्छे लकब अलकाब देते हैं। दिल में कुछ और जुबान पे कुछ होना तो सच्ची मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। खैर कहने लगे के अजीज मिसर है सरदार है फुला इन लहू अबन शेहन कबीरन, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, आप करें क्या, इसकी जगह हम में से किसी एक को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। अब गम ये नहीं था कि भाई जेल में रह जाएगा, देखिए यहां फर्क देखिएगा, गम ये था कि हम बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। फर्क होता है, किसी को तकलीफ पहुंचे ये तो खून बंदे का जलता है, लेकिन हमें बात जवाब देनी पड़ेगी ये सही नहीं है। तो कहने लगे ऐसा कीजिए कि बिन जमीन को जाने दें और हम में से किसी एक को रख लें और हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा पनाह बखुदा दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं, जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जिसने हमारा माल चोरी किया है, क्योंकि हकीकत है बिन्यामीन ने चोरी नहीं किया था, लेकिन ये हकीकत है कि माल उनके बैग में से निकला था। तो यहाँ ये कलाम का हुसन है, तौरिया बोलते हैं इसको, कि बाज़ दफ़ा एक ही बात को थोड़े से अल्फाज के बदल के साथ कर दिया जाए कि वो बज़ाहर लगे कुछ लेकिन हो कुछ, तो इसकी इजाज़त है। यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत कानून भी मिल रहा है, और वो क्या है कि बस दफ़ा इंसान खुद वो काम नहीं कर पाता जो अल्लाह उससे करवा देता है। अल्लाह ने ऐसे हालात बना दिए थे कि बिन जामीन जो थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे। अब इन भाइयों ने ये दावत तो दी लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ना माने, कहा क्यों भाई करे कोई और भरे क्यों, कोई और भरे हम क्यों करें। यहाँ एक और अमल की बात है, अमूमन जब जुल्म का कानून होता है तो आप देखिए कि जालिम बाहर फिरते हैं और बेगुनाह जब वो कैद में होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज को तोड़ा कि हम जुल्म नहीं करेंगे बल्कि हम उसी को लेंगे जिसके पास से हमारा सामान निकला। अब हुआ क्या, फलम मस्तयसु मिनहु खलसु नजीयन, अब भाइयों को तो फिक्र लगी हुई थी कि बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। तो जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहदो पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम ज्यादती कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। यहाँ नोट कीजिए, गुनाह का गिल्ट होता है। कितने साल हो गए थे इनको यूसुफ के साथ ये ज्यादती किए हुए, यूसुफ ने नहीं याद दिलाया लेकिन इनके जमीर ने इनको भूलने नहीं दिया। इसलिए याद रखिए कि जो बंदा गुनाह के गिल्ट में रहता है ना, बिलआखिर या वो डिप्रेशन में चला जाता है, या स्ट्रेस्ड हो जाता है, या उसको कोई बीमारी लग जाती है। दूसरी बात इधर से एक और पता चलती है, और वो क्या है कि जब कोई ऐसा मामला बिगड़ता है, यानी अब इन सारे भाइयों के ऊपर मसला आ रहा था ना, तो ऐसे वक्त में इंसान को अपने पिछले सारे गुनाह याद आते हैं। छोटी सी बात है, छोटे बड़े गुनाह हर एक से होते हैं, लेकिन दुआ कीजिए कि हम गुनाह करें दुनिया में और पकड़े जाएं। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम होता है एक बंदे के साथ, कि इंसान गलती करे और उस गलती की सजा में उसको दुनिया में कोई मुश्किल आ जाए। वजह क्या है कि वो फौरन उसका शऊर बेदार होगा कि आई डिड समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है। जब गलत करेगा, सोचेगा, तो फौरन अपनी इसलाह करेगा, अगली गलती से पहले तौबा कर चुका होगा। बहुत बड़ी पकड़ है इंसान की कि वो गुनाह करे और उसके ऊपर कोई मुश्किल ना आए। सोचिए जरा, एक शख्स था, कहते बड़ा ईमानदार था, कभी रिश्वत ना ली, सारी जिंदगी उसने इंसाफ से काम किया। बच्ची की शादी करीब आई, घर वालों ने मजबूर किया, क्या हुआ सब रिश्वत लेते हैं, तुम भी ले लो, बच्ची की शादी का मौका है। खैर, जो ही वो रिश्वत ले रहा था उसी वक्त पुलिस ने उसको पकड़ा, आगे छापा मारा, जेल में चला गया। तो उसने वहां जाके एक जुमला बोला, कहने लगा, लोग हर रोज रिश्वत लेते हैं, पकड़े नहीं जाते, मैंने सिर्फ आज रिश्वत ली तो मैं पकड़ा गया। इसलिए पकड़ा गया कि अल्लाह ने उसके दिल में खैर देखी हुई थी, अल्लाह उसको बचाना चाहता था अगले गुनाहों से। तो अल्लाह ना करे हम गुनाह करें, गुनाह फिर भी करते हैं, तो उस गुनाह की पादाश में अगर कोई ऐसा झटका लग जाए ना, तो उस पर नफिल पड़े कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरा शऊर बेदार किया ताकि मैं उस मतलब गलती पे आगे गलती ना करूं। मसलन आप देखिए कि बाज बस यूथ है, जब होती है, जब इंसान जवान होता है तो बहुत एक्टिव होता है, क्लेवर भी होता है। वो कहता है माँ बाप को क्या पता चलना है और फलां को कहाँ पता चलना है, और ना पता चले ठीक है, आप सोचते सक्सेसफुल है, नहीं पता लग जाए ताकि अगली दफा वो गलती ना हो कि जो माँ बाप का भी मुजरिम इंसान को बनाए और अल्लाह ताला का भी मुजरिम बनाए। खैर, अब उनको फिक्र क्या लगा कि बाप को क्या जवाब देंगे। और दूसरी बात यह कि वही बड़ा भाई जिसने पहले मशवरा दिया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो, पीछे याद होगा आपको, कुएं में डाल दो, इसको कत्ल ना करो, अब दोबारा वही बोलता है। क्या कहने लगा बड़ा भाई जो था, काल कबीरुहुम, सबसे बड़े भाई ने कहा, अलम तालमु अन्न अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिकम मिन अल्लाह, कि तुम्हारे बाप ने तुमसे इस पर पक्का वादा लिया है। वह मिन कबलु मा फर्रतुम फी यूसुफ, और इससे पहले जो कमी बेशी की तुमने यूसुफ के मामले में, फलन अब्रहल अर्दहत तयाजन ली अभी, मैं तो हरगिज इस जगह से नहीं हटूंगा, मैं यहीं रहूंगा जब तक कि मेरा बाप मुझे आने की इजाजत ना दे दे, औ यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह मेरे साथ कोई और मामला कर दे, क्योंकि वहुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करने वाला है। यहां भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है, आप देखिए कि यूसुफ तो पहले से वहीं थे, बिन्यामीन रोक लिए गए, तीसरा बेटा जो है वो अब अपनी मर्जी से रुक रहा है। इससे लगता है कि इस बड़े बेटे के दिल में खैर का मादा ज्यादा था। इसने कहा कि देखो, अगर अब सिर्फ हम बिन जमीन को छोड़ेंगे तो बाप कहेगा ये चक्कर क्या है, भेड़िया ने भी खाया तो यूसुफ को खाया, और अब गए हैं तो चोरी भी हो गई और गवर्नमेंट ने पुलिस ने कैद कर लिया तो बिनजामीन को किया, तुम में से किसी को कोई क्यों नहीं करता। हाँ, तो इस वक्त इसने अपने आप को वहां रखना, बाप की नजरों में अपना बेगुनाह होना साबित किया। ये मामला पहले क्यों ना किया, यहां एक नोट करने की बात है। यूसुफ को तो इन्होंने खुद छोड़ा था, उस वक्त नहीं कहा इन्होंने कि भाई मैं भी रहता हूं, जाओ बाप को कह दो यूसुफ को भेड़िया खा गया। और बड़ा कहते हैं कि इनका नाम यहूदा था, कोई कहता है रोबेल था, कुछ भी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पता था कि अगर बाप मेरे यहाँ रहने को देखकर इधर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि यूसुफ की कहानी फेब्रिकेटेड कहानी है। तो यहाँ से पता है एक छोटी सी बात का लगता है कि जब इंसान सच्चा होता है ना, तो हर मुमकिन तरीके से अपना दिफा करता है। इन्होंने कहा कि मैं यही रहूंगा, दूसरे भाइयों को कहने लगा, इर्जियो इला अबीकुम, जाओ अपने बाप की तरफ वापिस जाओ। तुम जाओ फकूलू या अबाना और कहो ए अब्बा जान इन नबन का सरका, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है। जरा इन जुमलों को देखिएगा, पहली बात लफ्ज़ अबीकुम को हाईलाइट कर लें। क्या इस कहने वाले का बाप ये नहीं थे थे ना? लेकिन यहां से आपको मैनर्स दिखते हैं। एक ही माँ के बच्चे होते हैं, तीन चार हैं। एक बच्चा कहता है अम्मी आपको तो मेरे से प्यार ही नहीं है, वजह कह के देखिए आप बोलते कैसे हैं। ये कहने की बजाय कि जाओ हमारे बाप की तरफ, इर्जु इला अभी ना, ये नहीं कहा बल्कि कहा अभी होगा तुम्हारा बाप मेरा नहीं। वो औलाद जो माँ बाप से जरा दूर होती है ना, उनकी टोन से पता चल जाता है कि ये तुम्हारा बाप है। फिर दूसरा जुमला इनका देखिएगा, इन नब नका, बेशक तेरे बेटे ने चोरी की है। तो बाप का बेटा इनका कुछ नहीं लगता था, इनका भाई लगता था। तो ये है अल्फाज का चुनाव। जब दिलों में किसी के लिए मोहब्बत होती है ना, तो हम उसके लिए बहुत खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं। दिल चाहता है कि ऐसे लफ्ज बोले कि जो जैसे मोहब्बत में बसे हुए हो, लेकिन दिल में बुगस्त है ना, तो कहा जाके कह दो जी आपके बेटे ने चोरी की है। हाँ वमा शहेतना इल्ला बिमा अलिमना, हमने उसको देखा नहीं है वैसे चोरी करते हुए, बस जो हमें पता चला हम तो वही बात कह रहे हैं। यानी साथ ये भी कह दिया कि हमने उसको चोरी करते देखा नहीं, लेकिन हमें बताया यही गया है कि उसने चोरी की। और वमा कुन्ना लिलगैबि हाफिज़ीन, और गैब के मामलों में तो हम नहीं नजर रखते, हमें नहीं पता कि क्या पता आपके बेटे ने चोरी कर ली हो। बहरहाल कहानी कहाँ पहुंच गई कि अब भाई वापस जा रहे हैं, बिन्यामीन भी रह गए मिस्र में और बड़े भाई यहूदा भी रह गए। वसलिल क़रयत अल्लती कुन्ना फीहा वल ईर अल्लती अक़बलना फीहा व इन्ना लसादिकून। अब बेटे गए वापस, बाप को जाके बता दिया कि अब्बा जान ये हो गया, बिन्यामीन ने चोरी कर ली और बड़ा भाई वहां साथ ही रह गया। और दूसरी बात, अगर आपको हमारी बात का एतबार नहीं, तो आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, इस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। क्या पता चला, पहले ये बातें नहीं की, अब सच्चे थे ना, हकीकत में सच्चे थे। कहने लगे वो जो पूरा काफला है उनसे पूछ लें बिल्कुल ये वाक्या हुआ है, पहले ऐसी बात नहीं थी। अब आप सोचिए कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजरी होगी, चोट पे चोट। एक होता है पहली दफा जख्म लगना, हाथ पे कट लगता है, कोई थोड़ा सा पस पड़ गई, दर्द तो उसकी भी बहुत होती है, लेकिन दुखा हुआ हाथ जब दुखता है तो क्या होता है, चीखें निकल जाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में बाप का दिल इतना दुखा था कि वो जिसको कहना चाहिए कि पस पड़ी हुई थी, अब ऊपर चोट पड़ गई बिन्यामीन की भी। बोले काला बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरा, कहा बल्कि बना ली है तुम्हारे नफ्स ने एक बात, यानी झूठ बोलते हो तुम, ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें पुलिस में भेज दूं? नहीं, फसबरुन जमील, मैं सब्र ही करूंगा। ये जुमला पहले भी बोला था, मैं सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र करूंगा। ला शिक व तफीहा, ऐसे बाप का किरदार कहाँ है हमारे यहाँ? अमूमन अमूमन इल्ला माशाल्लाह, बच्चों को तो माँ बाप के हकूक बहुत बताए जाते हैं, बल्कि मैंने तो बाज दफा वो भोली भाली माएं भी देखी हैं जो बच्चों को अल्लाह के भी नहीं हक कभी बता चुकी, लेकिन कहती है कि इनको माँ बाप के हकूक जरूर बताएं। लेकिन जो टॉपिक निगलेक्टेड है ना हमारे कल्चर में, वो बच्चों के हकूक है। यहाँ आपको एक अच्छा बाप दिख रहा है। पहली बात है कि बाप ने बच्चों को तोड़ा नहीं था अपने से, कटे नहीं, पीछे बात हम कर चुके, बेटों को सारी जिंदगी साथ रखा। फिर दूसरी बात देखिए कि आप बेटों के हाथों से एक दूसरा सदमा उनको बेशक पहुंच रहा है, लेकिन बाप बोल नहीं रहे, कहते हैं सब्र। आप मैं हम सब जिसको भी किसी इंसान की, छोटे इंसान की यानी बच्चे की या किसी स्टूडेंट की तरबियत का मौका मिले, इस बात को पल्ले से बांध रहे, और वो क्या है, हेल्म। माँ का हेल्म जो होता है ना वो बच्चे में आएगा, जो माए हर वक्त बोलती रहती है ना, आप देखिएगा थोड़े अरसे के बाद उनके बच्चों की जुबान खुल जाती है। जो माएं बात बात पे चिढ़ती है ना, चिल्ला के झल्ला के बोलेंगी, आप देखिए कुछ अरसे के बाद उनके बच्चे भी चिल्लाएंगे। मैं कैसी माँ को जानती हूँ, कई दफा देखा कि जब जवान बच्चे खासतौर पे, जाओ बेटा दही ले आओ, दूध ले आओ, अब बच्चा सा पता चला वो दही लेने गए, वहां कोई दोस्त मिल गया, घंटा लगा दिया। अब माँ को हकीकी जरूरत है, पहले दौर की कहानियां जरा ज्यादा मुश्किल होती थी, आज तो हर चीज हमें घरों में मिल जाती है। अब एक टांग पे चक्कर लग रहे हैं, आया नहीं, अल्लाह खैर करे ये करे। अच्छा मैं उनको देखती थी कभी, हमारे करीबी लोगों में से थी, मैं देखती थी कि आज तो इनका बेटा आ गया तो खैर कोई नहीं, गुस्सा भी है, फिक्र भी है, और रंज भी है कि काम भी नहीं हुआ और पता नहीं ठीक है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं। अच्छा जब वो घंटा डेढ़ दो लगा के आए, तो मैं तो डर जाती थी कि पता नहीं अब इस माँ ने दरवाजा खुलते ही क्या चीखना है, लेकिन मैं देखती थी वो बिल्कुल खामोश होती थी, आराम से उससे चीज ले ली, काम किया, फिर बाद में बैठ के बताना कि किधर रह गए थे, क्या हो गया था। यकीन करें मैंने इस चीज का इतना अच्छा इफेक्ट देखा कि ना मार बच्चे में वो बेझिझक नहीं हुए। जब माएं बच्चों के मुंह पे लग के डांट टिपट में उनके सामने बोलने लग जाती है ना, तो बच्चों की भी झिझक खुलती है। तो चाहे माँ बच्चे का रिश्ता है या शौहर बीवी का या भाई बहन का, रिश्तों की झिझक कभी ना खत्म करें। लिख लें अपनी जिंदगी में आपको किसी रिश्तेदार से कितना शिकवा है, मुंह से नहीं बोलना। सास बहू है ना, दिल में आग लगी हुई है, दिल में कट्टा कट्टी है, आमने सामने आके स्माइल नहीं खत्म होना चाहिए। कई घर टूटने से बच जाएं अगर शौहर बीवी इस असूल पे काम करें। यकीन कीजिए हमारे अंदर ठहराव नहीं होता, हम हर वक्त उछले रहते हैं, हम हर वक्त हाइपर हैं, और ये जो हाइपरिज्म है ना, इसके पीछे तकब्बुर है। माँ बाप ने तो कभी उसको एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारी कोई बात रद्द भी हो सकती है। बात बाद में होती थी, ड्राइवर साहब पहले निकल जाते थे। बेटी एक मांगती थी, माँ कहती थी बेटी दो ले ले, बाप कहता था तीन ले ले, भाई कहता था एक मैं देता हूँ। ना उस बच्ची ने कभी नो सुनी, ना उसको कभी किसी जगह कमी हुई। अब क्या बताइए ससुराल में जाके ये सारे लाड चलते, इल्ला माशाल्लाह फर्क होता है। देखिए कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ने दी हुई हैं, वह भी कहते हैं ऐसी मोहब्बतों को गॉड गिफ्टेड। बेटी जैसी भी होगी माँ को अच्छी ही लगेगी, बहन कुछ भी नहीं करेगी तो भाई को अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ मोहब्बतें खरीदनी पड़ती हैं और वो ससुराल की मोहब्बतें होती हैं। आप कह लीजिए कि खून के रिश्ते अल्लाह की तरफ से मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन ससुराल के रिश्तों में मोहब्बत खरीदनी पड़ती है। और आपको पता है किस कीमत से खरीदते हैं? पैसों से नहीं। अच्छे गिफ्ट दे दें, तोहफे दे दें, नहीं, ससुराल की मोहब्बतें खरीदनी पड़ती हैं कुर्बानी की कीमत पे, आजजी की कीमत पे, नरमी की कीमत पे, बींग केयरिंग, यू शुड बी केयरिंग। एक कहानी मैंने एक दफा आज की बात में सुनाई थी कि दो बहनें थी, दो बहुएं किसी घर में आई, एक बड़ी खूबसूरत थी और एक वाजबी शक्ल की थी। घर वाले सारे खूबसूरत और बड़े घर की बेटी जो थी उसके साथ लग गए, और जो दूसरे घर की और जरा कमजोर शक्ल की थी उसको थोड़ा इग्नोर करने लगे। अब एक सूरत ये थी कि वो दूसरी डिप्रेशन में चली जाती और हर वक्त की तू तू मैं होती, लेकिन वो बड़ी अकलमंद निकली। उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदे को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, नंदों से दोस्ती कर ली, देवरों की खिदमत करनी शुरू की, घर का सारा खाना पकाना उसने अपने ऊपर ले लिया, कभी कपड़े धो दिए, कुछ कर दिए। कहते हैं सिर्फ एक साल गुजरा तो वो जो जगह पे कल तक वो बड़ी खूबसूरत अकलौती लाडली बेटी थी ना बड़े घर की, वहां पे वो वाजबी शक्ल की आम सी लड़की आ चुकी थी। खिदमत जीतती है। कुरान में सूरत रात में अल्लाह ताला कहते हैं वा अम्मा यन्फौन्नास फयम्कुस, जो चीज लोगों को नफा देगी वही बचेगी। ये फितरत का असूल है। आपके काउंटर पे ग्राइंडिंग मशीन कब तक रहती है? जब तक वो ग्राइंड करती है। आप ब्लेंडर क्यों रखते हैं अपने किचन में कि वो काम कर रहा है? बताइए जो मशीन काम करना छोड़ दे कितने को दिन आप उसको अफोर्ड करते हैं? मेरा ले तब तक ही करेंगे जब तक उसकी जगह कोई दूसरी नहीं आ जाएगी। जिस दिन सही चीज आएगी आप उसको उतार के फेंक देंगे। आज उम्मत मुस्लिमों के साथ भी सच्ची बात है यही हुआ है। कुंतुम खैरा उम्मत अखरिजत लिन्नास, जब तक ये कौम जिसको अल्लाह ने इंसानियत के लिए चुना था, ये काम कर रही थी, डिस्कवरीज कर रही थी, साइंस में आगे थे, अल्लाह ने इनको दुनिया में अरूज दिया हुआ था। आज हम सिर्फ जूतियां और परस बनाने और कपड़े बनाने पर लग गए, वेपन्स और बड़े बड़े काम रिसर्च वर्क दूसरों ने ले लिया, आज हम ठोकरों में पड़े हुए। आज हम मुसलमानों ने चूके इस्लाम का मैसेज देना छोड़ दिया, अल्लाह ने हमें दुनिया में जलील व ख्वार कर दिया। तो हमारे लिए इसमें छोटी बात कर लीजिए तो खुलासा क्या है कि जिस जगह भी आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें या आपके सामने हो, थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए, और इसके लिए अंदर से किबर खत्म करना पड़ता है। फिर अगली बात देखिए, हजरत याकूब का एक खूबसूरत जुमला, अस्सल्लाहु यातीनी बिहिम जमीया, उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इन सारों को अब साथ ही ले आएगा, क्योंकि इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। ये जुमला क्या बताता है? ये मोमिन के दिल की कैफियत है। मोमिन कौन होता है? मिसाल है कि आपसे पूछा जाएगा बॉडी का टेम्परेचर कैसे मालूम होता है, आप कहेंगे जी थर्मामीटर लगा लेंगे, अभी पता चल जाएगा हमारा किसका क्या है, 100 किसका और उससे कम किसका, 96 किसका है ना, टेम्परेचर है फौरन पता चल जाएगा आपका, एसी बता देगा इस वक्त 22 है या 25 है, लगता है ना पता। सवाल पैदा होता है कि ये कैसे पता चले कि मेरे अंदर ईमान किस दर्जे का है, तो उसका जवाब इसके अंदर मिलेगा। ईमान की अलामत है कि जितनी बड़ी मुश्किल आएगी आपके ऊपर उतने ज्यादा पुर उम्मीद होंगे, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है उतनी जल्दी सुबह होती है। कितने सितारे कटते हैं तो फिर एक सूरज उगता है। और एक रिवायत मुझे इतनी खूबसूरत लगती है, उसका खुलासा यह है कि अच्छे दिनों का इंतजार जो है ये खैरुल इबादा है। इंतजार उल फर्ज मिन खैर अल इबादा, कुछ इस किस्म के अल्फाज हैं। मिसाल है कि आप बीमार हैं, कोई आपसे पूछता है आपका क्या हाल है, तो आपके बिल्कुल ठीक हूं, अब तो बस मैं बिल्कुल ठीक होने वाली हूँ, परेशानी है, हालात ठीक नहीं, काम अच्छा नहीं, भाई सुनाइए भाई आपका कारोबार कैसा है, नहीं इंशाल्लाह बस मार्केट बदलने वाली है। इस कैफियत में जो बंदा रहता है ना, वो मुसलसल इबादत की कैफियत में, हमेशा बी होपफुल, बी ऑप्टमिस्टिक। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं, जब हम हर चीज के अंदर से ही कीड़े देखते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं दिखता। जैसे कुछ लोगों को पाकिस्तान में अब सिर्फ कीड़े ही दिखते हैं, वो कहते हैं जी इसने नहीं संवरना, जी पाकिस्तान अब गया, पाकिस्तान अब डूबा, ये असल में अपने ही बुगस में जलने वाले लोग हैं। नहीं आपके ही नहीं, अब सुबह बेदार हो रही है, अब जवान दिख रहे हैं, अब नमाज की सफों में सफेद दाढ़ियों से ज्यादा काली दाढ़ियों वाले मौजूद हैं, अब इस्लाम का सूरज निकल रहा है और इंशाल्लाह निकलेगा। कोई चीज कितनी भी नीचे जाए, बिल आखिर उसने ऊपर तो जाना होता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को अब उम्मीद थी कि ये फिर चोट क्यों पड़ी है, जरा गौर कीजिए ये तीसरी चोट है। पहले एक बेटे का सब्र, फिर दूसरे का, और अब तीसरे का। हमारे यहाँ किसी के ऊपर तीन चोटें पड़ जाएं तो क्या कहते हैं? मसलन किसी का एक बच्चा हुआ फौत हो गया, दूसरा बच्चा हुआ फौत हो गया, तीसरा भी हो गया, तो क्या कहते हैं? अब इसका नहीं होना। एक शादी हुई तलाक हो गई, दूसरी शादी हुई तलाक हो गई, तीसरी शादी हुई तलाक हो गई, क्या कहते हैं? कोई नहीं जी बसना, अगर बसना होता तो पहले ही बस जाता। ऐसे करते हैं, एक काम को शुरू करे ना चले, दूसरा करे, तीसरा, हम तो फतवे दे के आ जाते हैं कि अब इसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं, और ऐसे बंदे को डिप्रेशन का मरीज करके हॉस्पिटल में छोड़ दो या पागलखाने में छोड़ दो। नहीं, असल्लाहु याति, यानी बी होपफुल। और ईमान है या ईमान उबैनल खौफ इवर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज का नाम है।